मुश्किल अल्फाज की वजाहत, सूरत अंबिया आयत नंबर 30, रतकन, रा ता काफ, रतक, किसी चीज का मुंह बंद होना, किसी चीज का मुंह बंद होना, दो चीजों का या कई चीजों का मिलकर जुड़ जाना, रतक क्या है? बंद, और आगे है फफतकनाहुमा, तो फाता क्वाफ, उसका खुल जाना, किसी चीज में बड़ा सा सुराख डालकर उसे खोल देना, या दो मुत्तसिल चीजों को अलग करना। तो रतक है बंद कर, बंद होना, और फतक है फाड़ना, खोलना, अलग अलग करना। और आप याद रखिएगा कि रत्न का ऑपोजिट क्या है? फतक। और फतक का ऑपोजिट क्या है? और आप याद कैसे रखेंगे? क्योंकि अगर आपको फतक दे दिया तो आप रत्न के मानी ना लिख देना, और रत्न दिया जाए तो फतक के मानी ना लिख दे, तो कैसे याद रखेंगे? नहीं तो वो तो फिर उस वक्त तो रा भी फा नजर आती है और फा भी रा। मैं घर बैठी सोच रही थी कि इनको कैसे बताऊं कि ये याद रखे, तो मुझे ये याद आया, ख्याल आया कि ये निशानी बताई जा सकती है कि पहले चीज जैसे बंद थी तो फिर खोली ना, तो हुरूफ तहजी में रा पहले है और फा बाद में है, तो आप इस लिहाज से याद रखें कि हुरूफ तहजी के लिहाज से जो लफ्ज रा से शुरू होता है, यानी अलिफ बा ता सा, फिर उसके बाद दाल जाल रा, तो वो तो है बंद, और वो जो हुरूफ तहजी के लिहाज से फा से शुरू होता है, फा बाद में आती है, तो बड़े बंद होगी तो खोलेंगे ना, तो फिर खोलने की बारी आएगी। तो बहरहाल ये मैं निशानी आपके लिए सोच रही थी कि कैसे आपको इस मुश्किल से निकाला जाए। बाकी ये कि हाँ, फा से भी फर्क, ये भी अच्छी है निशानी कि फर्क अलग करना। तो बहरहाल असल बात तो ये है कि ना करने के 100 बहाने, और जब करना चाहेंगे तो आप 100 तरीके जो है वो भी ढूंढ लेंगे। फिर इसके बाद है अगला लफ्ज, और वो है आयत नंबर 31 में रवासिया। क्या है इसका रूट वर्ड? तो इसका मादा है रासीन वो, और इसके मानी होते हैं गाड़ना, और रवासिया जो है ये रासिया उनकी जमा है, और बोझ को कहते हैं। इसी से ये लफ्ज जो है भारी पहाड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो जिबाल है ना, आम पहाड़ जो छोटे मोटे आपको नजर आते हैं, जबल की जमा जिबाल, लेकिन रासिया कि जमा रवासिया, ये भारी बोझ, भारी पहाड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये वो पहाड़ हैं जो 3 हिस्से जमीन के अंदर हैं और 1 हिस्सा ऊपर है। फिर उसके बाद जो है अगला लफ्ज है अनतमीदा। तमीदा का रूट वर्ड क्या है? तो इसका रूट वर्ड आपने सही बताया, क्या है? नीम या दाल, और इसके मानी है झुकना। इसी से मद भी है ना, लंबा करना, झुकाना, उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर है फिजाजन, फा जीम जीम, फा जीम जीम, और ये कहते हैं रास्ते को, फज। रास्ते के लिए कुरान में 8 लफ्ज आए हैं। सिरात, सिरात कौन सा रास्ता है? ऐसा रास्ता जिस पर मोहतात होकर चलना पड़े, तलवार की तरह बारीक, तेज, नोकीला वगैरह, और पुल सिरात आप पढ़ती हैं। फिर तरीक है ना, तो तरीक हर तरह के रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मादी हो, मानवी हो। सबील कौन सा रास्ता है? कुशादा। ये आपको खूब याद रहता है क्योंकि आपको भी खुली सड़क चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, और खुला रास्ता चाहिएगा ना, कुशादा। सबील ऐसा रास्ता जिस पर बहुत सहूलत चले, काफी आमदोरफ्त रहती हो। और चौथा है फज, और फज जो है फज्जतुन दो पहाड़ों के दरमियान की कुशादगी को कहते हैं, दो पहाड़ों का दरमियानी खुला रास्ता है ना। तो फजवा क्या होता है, दो पहाड़ों के दरमियान का मैदान, और फज उस खुले रास्ते को कहते हैं जो इस मैदान में से गुजर कर इन दोनों पहाड़ों को मिलाता है। फज की जमा है फिजाज, और यहां पे क्या है, फिजाजन जमा इस्तेमाल हुई है। फिर है सकफन, सकफन, और इसके माने क्या है, छत के, सीन काफा, छत। अच्छा, छत जो है इसके लिए भी जो है वो आप देखें कि कुरान ने जो है वो सिर्फ यही सकफन लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, और कौन सा है कुछ याद है? हाँ, तो छत के लिए अर्श है, सक्फ है और बिना। आज तो आप पूरे हो गए इम्तिहान में पास, और तीन ही लफ्ज आए हैं। अर्श होता है कि पूरी छत को भी कहते हैं और उसकी लकड़ियों को भी कहते हैं, और सक्फ होता है छत का अंदरूनी हिस्सा, सील्ड सीलिंग। हाँ, बिना होता है फर्श के मुकाबले पर छत के मानों में ये इस्तेमाल होता है। समझ आ गया आपको? अर्श जो है जैसे मकान पर लकड़ियां नहीं डालते, छतीर वगैरह, अंगूर वगैरह की जो बेलें हैं, बेलों को चढ़ाना किसी उस पर लकड़ियों पर, तो अर्श के बुनियादी तौर पर दो मानी होते हैं, तख्ते शाही भी और छत में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां भी। और ये लफ्ज कमरे की छत, खैमा, साइबान, हर वो चीज जो साया करे उसके लिए इस्तेमाल होता है। पीछे पढ़ भी चुकी थी ना, औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ाफ़ियतुन अला उरूशिहा। फिर इसी तरह जो सक्फ है, ये सीलिंग, इसकी जमा सुकुफ है, छत का अंदरूनी हिस्सा जो कमरे के अंदर से नजर आता है ना, आप जैसे अब हम बैठे हुए हैं, ये जो हमें नजर आ रहा है इसको कहते हैं सक्फ। और बिना, कोई भी तामीरशुदा इमारत, इमारत के हिस्से को बिना कहते हैं, खा वो बुनियाद हो या दीवार हो या छत हो या पूरी इमारत हो। तो गोया के बिना का लफ्ज दीवार, छत, बुनियाद किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जब फर्श के मुकाबले पर बिना है ना, कि एक जगह पे आयत में फर्श लफ्ज आया, दूसरी जगह बिना आया, तो फिर मानी क्या होंगे, छत के होंगे। फिर मानी छत के होंगे कि फर्श के ऑपोजिट आया है, तो मानी छत के होंगे। वैसे तो बिना के मानी बिल्डिंग के हैं, इमारत के हैं, और कहीं वो दीवार के मानी में आ जाता है तो मुख्तलिफ मानी ये लफ्ज दे देता है। खैर, आगे चलते हैं। मोरेदून, ऐन रा द्वाद, और मानी क्या है, एराज करना। अन की प्रेपोजिशन भी आई है ना। अगर इला की आती, हाँ, अर्ज हवाले करना, पेश करना, लेकिन अन की है तो उसे एराज बरतना। फलक, फा लाम का फलक, और फलक लफ्ज जो है इसके मानी क्या होते हैं, दायरे के, हर दायरे और गोल चीज को फलक कहते हैं। ये जो चरखा नहीं होता, ये जो देहाती औरतें जिसे धागा बनाती थी, सूत काटती थी, चरखे में एक गोल चमड़ा भी लगा होता है, उसको भी फलकतुल मखज़ल कहते हैं, कि चरखे का जो है वो दायरा। आसमान को भी फलक कहा जाता है, और यहां पे मुराद क्या है कि सूरज और चांद की के वो रास्ते, वो मदारें जिनमें हर सयारा जो है वो चलता है, या सूरज है या चांद है या जमीन है, ऑर्बिट्स जो हैं, उसके लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप देखें कश्ती जो है उसको भी फुल्क कहते हैं, वो क्या करती है, जब वो घूमती है तो चलती है तो दायरे बनते हैं ना, और वो दायरे की तरह चल रही होती है, तो आसमान को भी वो कहते हैं, तो कश्ती को भी कहते हैं। तो मानी के लिहाज से इसमें एक जो है वो निस्बत है। यस बाहून, सीन बाहा, क्या मानी है, तैरना। और ये जो तैरना होता है, इससे कौन सा तैरना होता है, कि किसी चीज में तेजी से तैरना, सिर्फ तैरना नहीं तेजी से तैरना। अब आप देखे पानी में जब तैरते हैं तो कोई चीज नहीं होती तो भी तेजी से तैरा जाता है, इसी तरह ये भी अपने ऑर्बिट्स में तेजी से तैरते हैं। और इसी तरह आप तस्बीह जो करते हैं, बाकी बयान करना, उसके लिए भी लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप अल्लाह की तस्बीह में मशगूल होते हैं तेजी से, कोई रुकावट नहीं होती और आप उसको कर रहे होते हैं अगर आप चाहें तो। फिर उसके बाद है मैं आपसे वैसे पूछ लेती हूँ, मैं आगे चली गई थी, आयत 35 में है जायका, जायका रेस्टोरेंट तो आता है ना, और जबान का जायका हमें सबको याद रहता है, यहाँ पे जायकातुल मौत, तो क्या है इसका रूट, क्या जाल व काफ, जौक, जाल व काफ है शौक। अच्छा जी, इसके बाद है आय 39 है, ये कुफूना कैफ, मानी क्या है, हथेली के लिए आता है, और इसी से जो है वो पूरा के मानी में भी इस्तेमाल होता है, उदखुलू फिसिल में काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो कफ, कफ का मतलब क्या होता है, रोकना, जैसे किसी चीज को इंसान अपने हाथ पर रोके ना, हाथ से रोके, तो यहाँ पे हाथ की बजाय बस ऐसे ही रोकने के मानी में ये जो है ना इस्तेमाल हुआ है, यानी हाथ से रोकना, कि कोई भी जब इंसान के चेहरे पर मार पड़ती है तो इंसान उसको हाथ से रोकता है, क्योंकि हाथ सख्त होता है बनिस्बत चेहरे के, चेहरा नरम और नाजिक है। आयत 40 में है फतह बहातो हम बहाता, इसका मतलब होता है मबहूत हो जाना, हैरान हो जाना, शशदर, तो हैरान का अगला ये दर्जा होता है। आयत 41 में है फहाका, बस ठीक वैसे तुका बताया आपने, फहाका जो है हा या काफ, इसका मतलब है घेरना, और आप भी वैसे अब किताब लिख सकते हैं वैसे, है ना, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है कि जो है वो क्या है। आगे है आयत नंबर 41 में यस्तहज़िऊन, फहाका के मानी तो आते हैं ना, क्या है, घेरना, घेरना, यस्तहज़िऊन क्या रूटवर्ड है, हाजा हमजा, और मानी क्या है इसके, मजाक, मजाक ठठा, तो मजाक के लिए कुरान में कितने लफ्ज हैं, इस्तेहज़ा है, फनदा और फनदा और सखरा, तो तीन लफ्ज है ना, तो फनदा क्या है, हाँ किसी को बुढ़ापे की वजह से कहना कि ये सिठे आ गया है, और यस्ताज़ेऊ में और मस्खरापन में क्या फर्क है, यस्ताज़ेऊ कौन सा मजाक है, शाबाश, अंदरूनी मजाक, और मस्खरापन कौन सा है, जाहिरी तौर पर जो किसी दूसरे का उड़ाया जाता है, और आप आपको इसका नुक्ता बताया था कि कैसे याद रखना है, कि मस्खरे मस्खरा उसे याद रखना है ना, मैं यक लाओकुम काफ लाम हमजा, काफ लाम हमजा, और इसके मानी होते हैं हिफाजत करना, निगरानी करना, निगहबानी करना, और हिफाजत के लिए वैसे चार लफ्ज कुरान में आए हैं, हफिजा, हफिजा आम है किसी चीज को जाया होने से बचाना, दूसरा है रा, वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राउन, तो रा का मतलब होता है हिफाजत और बैरूनी खतरात के असबाब दूर करना, जैसे चरवाहे, चरवाहे को राई कहते हैं ना, तो वो अपने रेवड़ और बाहर से कोई हमला नहीं होने देता, हिफाजत करता है। तीसरा है आसना, वा मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, अहसनत, अहाता के जरिए हिफाजत, आपको पता है ना कि मरियम बिन इमरान ने اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا. اور آپ پیچھے پڑھ بھی چکی تھی نا والمحسنات, جب پانچواں پارہ پڑا تھا تو خاص واد نون حسن قلعے کو کہتے ہیں نا, قلعے کے ذریعے لوگ حفاظت کرتے ہیں. اور چوتھا ہے کلا, حفاظت کر کے اسے ہی سالم رکھنا, کسی چیز پر ہر وقت نگاہ رکھنا اور اسے باقی رکھنا. اس کے اندر نا دو باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں, یاد رکھیں. کلا میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں, ایک مسلسل جو ہے وہ نگاہ رکھنا, ہر وقت نگاہ رکھنا, اور نمبر دو ثبات, یعنی اس کو باقی رکھنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز پر ایسے نگاہیں رکھی ہوئی ہیں, ایسے اس کی نگرانی ہو رہی ہے کہ اس کی نگرانی کی وجہ سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی, کوئی آفت اس کی طرف نہیں آ سکتی. سمجھ آ گئی؟ نگرانی نمبر ٹو ثبات, حفاظت, اور پھر اس کو صحیح سالم رکھنا, دو باتیں ضروری ہیں اس کے اندر. پھر ہے آیت نمبر 44 میں, اور یہ لفظ ہے پالا, پالا علیہم. تو اس کا روٹ جو ہے وہ کیا ہے, تو اس کا روٹ ورڈ ہے توئے واو لام طول سے ہے, اور فراخی کے معنی میں بھی آتا ہے, زمانے کا لمبا ہونا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ہے آیت نمبر 46 میں نفحتن, نون فا ہا, سردی میں ہوا کا چلنا, سرد ہوا کا چلنا, سرد ہوا کا ایک جھونکا. اس کا اپوزٹ ہے لفحا. یہ کیا ہے, نفحا ہے نا, تو لام بس لگا دیں, لفحا, گرم ہوا کا ایک جھونکا. لفحا کسے کہتے ہیں؟ گرم ہوا کا ایک جھونکا. تو یہاں جو ہے آپ کو پھر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جو حرف ہے, یعنی ایک لیٹر کے فرق سے معنی جو ہے اس میں فرق پیدا ہو گیا. تو ایسے جو ہیں, ایسی مثال آپ کے پاس پہلے بھی ایک تھی, وہ کون سی تھی؟ آپ نے ایک مثال اور تھی, کیا بتایا آپ نے؟ رتق فتق, ابھی آپ نے پڑھا, پہلے آپ نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, حنف جنف. دیکھا نا ماشاء اللہ, آتا ہے بس تو ذرا چھیڑ تو دے, تشنا مضراب ہے ساز, تار بتاب ہے, ساز بتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے, بس چھیڑنے کی ضرورت ہے. دوسرا کیا ہے؟ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ درج اور درک یہ پڑھا تھا, پھر اسی طرح سراب شراب, سلف خلف, اور جساسا حساسا پڑھا تھا نا, جساسا حساسا. جساسا کیا تھا؟ جاسوسی کرنا. کیا ہوتا ہے جاسوسی؟ اندرونی حالات معلوم کرنا ہے نا. اور حساسا بیرونی حالت معلوم کرنے کے لیے جستجو کرنا. تو جسس میں اندرونی حالات معلوم کرنا, اور حسس میں بیرونی حالات احساس کرنا نا. اور آپ نے برازا بریہا بھی پڑھا تھا, برازا کب پڑھا تھا آپ نے؟ پڑھا تھا ولما برازو لے جالوت و جنودے. تو برازا کیا تھا؟ سامنے آنا, کھلے میدان میں نکل آنا تاکہ دوسرے لوگ دیکھ لیں. اور بریہا کیا تھا؟ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین, نہیں ہٹوں گا میں. تو خیر آپ نے اور بھی لفظ پڑھے تھے, لیکن ابھی آج اگر اتنے جو چند ایک پڑھے ہیں, سلف خلف بھی پتہ ہے نا, اتنے اگر آپ کو یاد رہے تو یہ بھی بڑی بات ہے, صحیح ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ بات بھی یاد رہے کہ رتق اور فتق उन्होंने बड़ी खूबसूरत फौरन मिसाल दी माशाल्लाह के। और हम पढ़ रहे थे नफहतुन, और नफा जो है इसके मानी होते हैं सख्त सर्द हवा की एक भाप, एक दफा हवा का किसी को टकराना, बस एक झोंका, जैसे किसी को एक बार धुनी से हवा दे दी जाए। और लफा गरम मुंह का एक झोंका, जैसे मुंह झुलस देने वाली गरम हवा की एक भाप। आगे चलते हैं। वह नदाऊ, वह नदाऊ वाद ऐन, शाबाश। वाद ऐन जो है इसके मानी है वदाऊ के मानी क्या है? हाँ, रखना किसी चीज को। वह नदाऊ और हम रखेंगे। मवाजीन का रूट क्या है? वजानून, वजन से है। किस्त की खास बात क्या है? ज़वेल अज़ाद में है। इसी से पता चल जाता है कि खास बात क्या है। ये राज तो नहीं है कहीं। अच्छा, कयामती का रूट क्या है?
कौम,
कावोमीम। मिसकाल का रूट क्या है? सकाफलम, शक्ल, बोझ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है हब्बतिन, हाबाबा, हुब भी है, और इसी से ये लफ्ज जो है वो दाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खरदलिन, खारा दालाम, है ना? और इसका मतलब क्या होता है? राई। राई तो आपको पता है ना किसे कहते हैं? राई का दाना, बहुत मामूली सी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने खरदल जो है, कुरान में राई का दाना यानी जर्रे में इंतहाई कलील मिकदार जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है खरदल, ठीक है ना? और फतील भी थोड़ी सी मिकदार के लिए है, नकीर भी बहुत थोड़ी मिकदार के लिए है, कितमीर भी इतनी थोड़ी मिकदार जो ना होने के बराबर हो, और कलील। तो कलील, फतील, नकीर, कितमीर और फवाक का लफ्ज भी आता है। तो चले, कलील तो समझ में आ गया, कसीर के मुकाबले में कलील। फतील बटी हुई रस्सी को कहते हैं, खजूर की गुठली के अंदर जो शगाफ होता है, फतीला बारीक धागे को भी कहते हैं। फतील किसे कहते हैं? खजूर की गुठली के अंदर जो है ना, वो जो खजूर के अंदर एक कटाव सा होता है, उसके अंदर एक धागा सा आपको नजर आता है, अब उसको कहते हैं। तो बहुत थोड़ी मिकदार वाला, यूज नमूना फतीला। और नकीर से मुराद भी बहुत थोड़ी मिकदार ली जाती है, जैसे खजूर की गुठली में छोटे से गोल निशान को कहते हैं। आप जरा देखिएगा, आजकल तो अफतारी करती हैं, खजूरें भी खूब दस्तरखान पर होती हैं, कभी बादामों वाली, कभी मोटी वाली, और कभी बारीक वाली, और कभी मदीना वाली, है ना, मक्का वाली। तो मुख्तलिफ खजूरें होती हैं आपके पास। तो कितमीर, खजूर की गुठली के ऊपर बारीक सा पर्दा, यानी गुठली याद करनी पड़ेगी अब आपको, उसका धागा, उसका नुक्ता और उसका बारीक सा जो है वो पर्दा। तो फवाक होता है दो दफा धोने के दरमियान का वक्त, धोने वाले के हाथ से थनों को दबाना और हाथ खोलने के दरमियान का वक्त, और थोड़ा सा ही वक्त होता है। वो एक दफा हाथ को जब दबाता है तो दूध निकलता है, फिर वो जरा ढीला करता है तो दूध ऊपर से फिर भरता है, फिर वो दबाता है। तो धोने वाले के हाथ से थनों को दबाना और हाथ खोलने के दरमियान का वक्फा, तो ये भी क्या हुआ? बहुत कलील मुद्दत ना। तो बहरहाल यहां पे हमें क्या याद करना है? खरदल। अफा अंतुम लहू मुनकिरून, मुनकिरून का रूप क्या है? नून का अफरा, नकारा, इनकार करना।